प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतसेत्यम् द्वैतायनो विरहकातर्यागिह उपेक्षितं मेतया सर्वोऽभिनेतुं तं सर्वभूतविदनं मुनिमः वैवासिवासिवामि त्वया विन इति विज्ञानराधे भजनरहस्यसे सप्तम या के साधन के संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर जी के विचार सुन रहे थे। उन्होंने उसमें कहा गागो के कई अनुबंधन नए तो उतार मेनु सुने कल्पद स्तन वृत्त शब्द अस्पंदनम गतिमतां लोकस्तगुणां निर्योपास्त तलक्षणों और उसके पहले बताया था हंताय मद्रवर और उसके पहले है
पूर्णाकुल
भक्ति विनोद ठाकुर ने वो जो सबसे श्रेष्ठ था वो क्यों नहीं जो उस प्रकरण में उस
प्रकरण
जो जो सबसे श्रेष्ठ बात थी और उसको उन्होंने नहीं दिया और बाकी सबको उन्होंने चुन चुन करके उन्हीं को दिया जो पूर्वराग का है
भाग के अनुकूल
है समझ में। ये साधन लिखा है उस पर अष्टजाम साधन पूर्वराग नहीं है ये क्या है ये पूर्वराग का साधन कुछ है उसके अनुकूल साधन साधकों को इस अवस्था में पहचान किंतु वो साधक के लिए संभव पर गोपियों का पूर्वराग कोटि बार मिलने के बाद भी पूर्वराग है उनका पूर्वराग कभी
समाप्त नहीं होता नित्य नवायन
उसमें जो इसने प्रश्न किया पूर्णा पुलिंदाय पदा जरा घास पर कुमकुम लगा और उसको पुलिंद कन्या उन्हें लेकर के अपने अंगों में लगाया और उनका वह ताप तो वो उसको देख करके गोपियों को ये हुआ था है हमारा ऐसा कभी नहीं हम लोग का ऐसा कब सौभाग्य यदि मर करके पुलिंदी का न्याय हो तो हम लोगों का ऐसा सौभाग्य नहीं तो जन्म सार्थक होता है। अब ये प्रश्न आता है जैसे वो कुमकुम किनका था जो उस खास में लग गया तो कृष्ण के चरणों का था तो कृष्ण के चरणों में कुमकुम कहाँ से आया तो इसका उत्तर क्या तो किसी गोपी का चाहे वो अपने हाथ से लेकर के कुमकुम लगा दिए हों चाहे उनके अंग में लगा है कृष्ण के चरण कमल मार रखा है इसलिए वहाँ पर रखते हैं है किसी गोपी का तो फिर पूर्वराग कहाँ है तो उसके पहले वो मिल रही है और उसी को योग तो ऐसा क्यों किसी गोसाई ने उत्तर दिया
मिलन में ही तो कुमकुम रंजित हुआ है
हाँ तब तक फिर पूर्वराग कह रहा था इसलिए मालूम होता है जैसे वो मिलने के बाद ही इस अच्छा कल इस पर विचार
तो गोस्वामियों ने तो वो दिया है कि एक तो साहित्य के अनुसार ये संभव नहीं है कि चरणों में कुमकुम कैसे पहुँचे कुमकुम कैसे पहुँचे वहाँ पर इसलिए दिखा है कि कोई नवागता सखी नवेली सखी को देख करके और स्वयं कृष्ण गए तो इस तरह से मूर्छिता थी तो मूर्छिता अवस्था में उनके चरण स्पर्श कराए तो इसलिए उसमें मिलन दुआ
भूल गई है कि मिलन दुआ
उस समय लज्जित होकर के साथ ही साथ घास के ऊपर चले तो उसमें लग गया
अच्छा देखिए हमने कुछ समय में पहले बताया था
विश्वनाथ चौहान के एक तरह से और जीव गोस्वामी जी के और एक तरह से,
जो किंतु साधक के लिए उपयोगी नहीं होने के कारण इस श्लोक को अलग। कितना साधक उच्च स्थिति में कल हमने गो गो बकई अनुबंध हमने तो कहा गोपियां उसको कह रहे हैं राम कृष्ण दोनों का। यहाँ पर राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदन जो है
राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद,
तो यहाँ पर राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद गोपियां ये जो कह रहे हैं राम और कृष्ण के चरणों के स्पर्श से ये प्रमोदित हो रहे हैं गिरिराज, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं दोनों के लिए क्यों दोनों को इसलिए कर रही है साधारण लोगों को अपने भावों को नहीं समझाना देना चाहिए, वो तो केवल कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कृष्ण तो उनके बलदेव जी तो उनके कृष्ण के बड़े भैया हैं, इनके प्रति तो होना नहीं चाहिए, किंतु वहां पर जो दे रहे हैं अपने भाव को छिपाने के लिए ही जो लोग समझे ये राम और कृष्ण दोनों के चरण स्पर्श करके वो कितने आनंदित हुए, किंतु गोपियों का असल उद्देश्य ये कहने का नहीं है। उनका उद्देश्य है राम माने की अत्यंत रमणीय जिनके चरण कमल है जिनके ऐसे कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके वो मुख से भर
जाते हैं।
इसलिए यहाँ पर राम बलदेव जी का यह तात्पर्य नहीं है, बल्कि वो बलदेव जी रहने पर भी उनको देखती नहीं है, उनको कृष्ण ही देखते हैं। इसलिए वहाँ पर कहा गया कि जो कृष्ण के जो चरण जो अत्यंत रमणीय है उनका स्पर्श पा करके विराज गोवर्धन जी अत्यंत आनंद से भरपूर हो जाता है। गा गोपी का ही अनुबनम नहीं तो होगा, कृष्ण एक वन में रहने से काम नहीं चलेगा, कृष्ण एक वन से दूसरे वन में चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? असंख्य बहुए हैं उनके साथ और सखा भी अभिनत सखा है, उनके लिए थोड़े से एक मृदुवन में या किसी वन में उनके लिए स्थान भरपूर होगा, कोटी कोटी का है, इसलिए उनके साथ जब चलते हैं एक बल को पार करके फिर दूसरे बल में पहुंच जाते हैं। अंततः 9 लाख नंद बाबा की और ऐसे करते एक कोटी गाय भी हो जाए, एक कोटी गाय को चरने के लिए एक जगह अंगों में अंग लगा करके चरने में भी कितना चाहिए, मिलो जगह चाहिए, और यदि अलग अलग होकर के थोड़ी सी जब चरती होंगी जैसे कि गाय चरती हैं कि यहाँ कि वहाँ तो कितनी जगह चाहिए उनके, उस समय तक 16 वर्ष वृंदावन ही एकदम उसमें व्याप्त हो जाए। किंतु एक धाम में विशेषता जैसे भगवान विभु है उनका धाम भी विभु है, कभी इच्छानुसार इसे कभी करोड़ों करोड़ों के असंख्य विश्व ब्रह्मांड की जगह एक भूमि कला में भी हो सकती है वृंदावन के एक भूमि कला, और कभी संकुचित कर देते हैं छोटी सी हो जाती है, कभी विस्तृत धाम हो जाए जैसे पुष्पक विमान उसमें 5 आदमी बैठ सकता है, उसमें करोड़ आदमी बैठ सकते हैं और फिर वो छोटा नहीं, ऐसे ही ये धाम कृष्ण के समान कभी विभु कभी अणु, अणु से भी अणि, महिया कभी महिया, मणि महान से भी महान,
अणु भी अन्य,
इसलिए वृंदावन में ये सब चीजें इसे एक वन से दूसरे वनों में कृष्ण चले जा रहे हैं। वेनुस्वने कल इसकी व्याख्या में वेनुस्वनई कल्पदई तनुहित शक्त वेणु कैसा बजा रहे हैं कल कलश पदई कल्पदई मैंने क्या क और ल इसके आदि में है और ये मिले हुए हैं तो क्या हो जाएगा
ऐसे बीज मंत्र का जो गान
ऐसे बीज मंत्र का वो जो गान करके वहां के समस्त लोगों को आकर्षित करना और एक कल माने होता है कलपदय अस्फुट सब एक स्फुट और एक अस्फुट सब अरे सुनना तो हमारे पास में कौन आएगा जिसके तरफ हम आंख करेंगे ना दृष्टि भाई जरा सुनना तो सब लोग सोचे भाई हमको बुला रहे हैं हमको बुला रहे हैं और निर्दिष्ट एक नाम ले लिया राजा रमेश सीधा ना तो कौन आएगा इसलिए कृष्ण ने अस्फुट शब्द ऐसा किया जिससे कि वहां पर जितने पशु पक्षी प्राणी कीट पतंग और जितनी गोपियां हैं सखा हैं जो सुनता है उसी को बुलाए उसी में वो सब आ जाए और कलपद माने एक और होता है कल माने क्या समस्त स्वरों सप्त स्वरों से युक्त मूर्छना इत्यादि मूर्छना और क्या चढ़ाव उतराव होता है उसमें अवरोह और आरोह इत्यादि से जैसे ऐसराज में होता है या शारंगी में करुण स्वर धीरे 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 उतरता धीरे धीरे चढ़ता है ऐसा मालूम है जैसे हृदय निकला जा रहा है फिर भीतर भर रहा है जैसे कि जहाज से जबकि नीचे उतरते हैं या चढ़ते हैं ना तो चढ़ते हैं तो कैसा होता है ऐसे ही पूछना सबों से जब ऐसा बजाते हैं मालूम है सबको प्राणी खींच रहे हैं सबको बुला रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं कलपदई तनुभित सख्य अस्पंदन गतिमतानुकूल इसी से अवरोह और आरोह इत्यादि स्वरों से और कल्पत स्वर से जब उनको खींचते हैं ना जैसे कि जब ऊपर में विमान उड़ता है ना तो क्या होता है मालूम है ये हृदय नीचे जला जा रहा है
खाली
खाली ऊपर चला जा रहा है और जब उतरता है तब मन ऊपर में चला जाता है ऐसे ही उस वेणु के स्वर से सब हृदय को एकदम मानो प्राणों को ही एकदम खींच रहे हैं इसलिए सभी दौड़ करके आते हैं ऐसे ही नहीं आ जाते उस शरीर में एक ऐसा आकर्षण होता है जिसे सभी कैसा हो जाता है जो चलने वाले गतिमतान जो चलते वाले हैं उनको तो रोक देता है बस चुपचाप एकदम और जो नहीं चलने वाले हैं उनको गतिशील बना देता है माने उल्टा धर्म करा देता है कैसे करा देता है अस्पंदनम गतिमता जो गति वाले हैं
अस्पंदित हो जाते
एकदम अस्पंदनहीन हो जाते हैं जैसे बछड़ा चल रहा है चलता फिरता है बस ऐसा कर पेगा और सुनने लगा कान उसके ऐसे हो जाएगा और मानो का वो पत्थर की पुतली है ऐसा हो एकदम खड़ा हो दूध पी रहा था मैया का स्तन उसके मुख में है बस मुख ही में कान घर में लग गए दूध का घूट वो नीचे नहीं जा रहा ऊपर में नहीं जा रहा वहीं पर घास खा रहा था या घास खा रही है गाय बस वहीं काम किया एकदम चित्र लिखित पत्थर की मूर्ति हो अब पक्षी जो है वो पेड़ पर जहां थे जिस रूप में थे बस वही रूप में स्तब्ध रहे कभी कभी कृष्ण बंसी बजा रहे हैं बंसी बजाना आरंभ किया मयूर नाच रहा था पहले मे को देख करके तो बस वहीं पर खड़ा हो गया बस ओ ये हिलना डुलना मानो चित्र बना हुआ है ऐसे ही सब चीज और पुलक तरुण और जो तरुण इत्यादि तरुण ही नहीं यहाँ पर पेड़ पौधे वृक्ष पत्थर पत्थर क्या हो गया पिघलने लग गया अर्थात चलने लगा। नदी तो स्तब्ध हो गई, चलने वाली नदी थी वो तो चुपचाप बर्फ जम, जैसे बर्फ जम जाता है वैसे उसकी धारा रुक गई, और जो पत्थर है वो पिघल करके तरल हो गया। ऐसा वृक्ष, वृक्ष माने फल फूलों से भर करके प्रफुल्लित होकर के पुलकित इत्यादि हो गया, और गालियां झुक गई मन कृष्ण के चरणों को वो अपने गालों से अपने हाथों से उपहार देंगे। इसी तरह से सभी कुछ अदल बदल हो गया। निर्जाग, ये निर्जाग और पास का ही और बंसी का और कृष्ण का रूप होता है, मूल में कृष्ण का रूप। कृष्ण ने कैसा रूप बनाया, पगड़ी पहना और पगड़ी के ऊपर से निर्जाग लगाया। निर्जाग माने निश्चित रूप से या जो निर्जोग माने क्या, निश्चित रूप में अथवा निशेष रूप से जो वो पगड़ी ऐसी है कि जीव किसी ने देख लिया या किसी भी व्यक्ति ने देख लिया वो ऐसा कर देगा, अब फिर उससे छूटेगा नहीं, सब समय मन में वो रम जाएगी पगड़ी और सदा के लिए उसे भगवान कृष्ण के साथ जुड़ेगा सदा के लिए। इसलिए और पास उनको सदा के लिए बांध लिया, जैसे पास से बांधते हैं रस्सी से बांधते, वैसे इस रूप से बांध लिया। जिसने इस रूप को देखा वो सब किसी तरह से हो गया। लक्षणों विचित्र और विचित्र लक्षण पैदा कृष्ण के रूप में और कृष्ण की बंसी फल से सब लोग मुग्ध होकर के अपने धर्म को, ये बंसी का तात्पर्य क्या, गोपियां चाह रही हैं जितनी अनर्थों की जड़ है ये बंसी अनर्थों की जड़। इसलिए बंसी को जब तक रहेगी हम लोगों को धर्म से, धैर्य से, लज्जा से, सबसे हमको विचलित कर देगी। इसलिए सबसे पहले इन अर्थों की जड़ बंसी को ही हरण कर लेना। इसलिए वो लोग सोच रहे हैं यदि किसी प्रकार से बंसी मिल जाए तो इसको सबसे पहले हम लोगों को चुराना।
गोविंद लीला में एक पाव बंसी के पास मतलब ये घर में रहने से वो उतर जाता है, इसलिए ये चला गया बहुत अच्छा गोपियाँ।
किसी समय में गोपियों ने शर्त रख दी, जुआ मान खेला हो रहा है, पास खेला हो रहा है, गोटियां कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो उसमें कभी उनकी जीत कभी उनकी जीत, इस बार दाव लगा। उसने कहा जाए इस बार मैं बंसी का दाव लगाता हूँ, इसके ठीक बराबर वाली कोई चीज तुम लोग दाव पर लगाओ, इसके बदले में क्या दाव हो सकता है, कोई ठीक किसी का अनुरूप दाव लगाओ। राधा जी का मुक्ता हार, कोई भी कोई चीज हो तो अच्छा दाव लगा होने लगा। इस बार राधा जी की जीत हो गई, कृष्ण ने डिक्लेयर किया कि ये मेरी जीत हो, और सब गोपियां मिलकर के राधा जी ने कहा मेरी। तो कृष्ण तो कह रहे हैं मेरी जीत हुई। फिर गोपियों ने कहा अच्छा ठीक है मधुमंगल जो कह देगा, नहीं हम लोग बात को मानते ठीक है। और मधुमंगल के सामने लड्डू थोड़ा सा रख दिया, दिखला करके दिया नहीं। वो जानते थे कि मधुमंगल लड्डू देखते ही
पानी आ जाएगा
मुख में, और जैसा हम चाहेंगे वैसा कहला दे। लड्डू को दिखला दिया और इशारे से कहा यदि तुमने कह दिया हमारी तो जीत हो गई है, कृष्ण ऐसा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए तुम लड्डू ये सब तुम्हारे लिए समर्पित है यदि तुमने सच्ची बात करी। बस लड्डू के तरफ देख करके कृष्ण के तरफ में नहीं देखा, यदि कृष्ण के तरफ देखता तो फिर गड़बड़ हो जाता, और लड्डू की तरफ देखता रह गया और कह दिया जैसे गोपियों की जीत हो गई। अब बंसी नहीं दे रहा तो जबरदस्ती जैसे तैसे उनसे छीन लिया। और छीन करके दूसरी बातों में उसे लगा दिया। कृष्ण को पता ही नहीं चला। दूसरे प्रकार से वो कानों में लग गए, सेवाओं में लग गए, घूमते घामते। कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद में किसी ने कहा, जैसे हमारी बंसी कहाँ गई? अब वो खो गए। जब खूब चंचल हो गए, कहा जैसे ये छोटी सी बसुरिया के लिए बांस
बांस एक पाव हुआ,
वो भी सुखी
एक, और उसके लिए मूल्य नहीं है,
कांटे कौड़ी मूल्य, उसमें भी छेद पुरानी बांस बांस, और उसके लिए इतना, तो तुमको नया बांस हम खरीद करके मोटा सा इतना बांस दे देंगे, उसका तुम बंसी बना लेना, तो बड़ा
बोले तो महाराज नंदन होकर के
ऐसा, तुम अपने को तो राजा का लड़का कहता है नंदन नंदन, और उधर एक सब बांस की लकड़ी के लिए तुम्हारे प्राण जा रहे हैं। तरह तरह से उनको चिढ़ाते हैं। अब यहाँ तक तो बताया बतलाया था पूर्वराग। साधक लोग इसी तरह से, कृष्ण हमसे बहुत दूर हैं, आज तक नहीं मिले, ये सप्तम वाला साधक अर्थात प्रेम वाला साधक जो है वो करेगा, और हम लोग क्या करेंगे? हाय हमारा अनर्थ नहीं गया, कृष्ण नाम करेंगे, और कृष्ण नाम से उसमें राम नाम है, हरि नाम है, हरे नाम माने राधा नाम, इनसे प्रार्थना करेंगे, अभी तो हमारे अनर्थ नहीं गए, हमारी तरह तरह की अभिलाषाएं संसार की है, यही नहीं गई, अभी हरिनाम में मेरा विश्वास नहीं हुआ, अभी काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य नहीं गया, और की तो बात, मैं बहुत सोता हूँ, खा पी करके बहुत सो जाता हूँ, इसके मारे भगवान का भजन ही नहीं हो पाता, तो ये भी दूर नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? इसके लिए अंदर तो रोएगा कि नहीं? यदि इसके लिए नहीं रोता है तो भजन नहीं होगा, इसको भी प्रॉब्लम होगा। भगवान की यह अनुभूति, जो भगवान हमसे बहुत अभी दूर, दर्शन तो बहुत दूर की बात, वो तो पांचवें या छठे स्तर में उसके लिए आता है, हम तो इसके लिए तो हम करना चाहिए, साधु संघ में रह करके भी साधु संघ का जो फल है वो हमारे फल में, हमारी तरह तरह के गंदे विचार जो हैं, अभिलाषाएं हैं, हम चाहते हैं भगवान का भजन कर, तो अभी कुछ ऐसे बाहरी कामों में लग जाते हैं जो वो काम नहीं छोड़ते और भक्ति रह जाती। कैसे? मान लिया कि हम जन्माष्टमी का त्योहार, जन्माष्टमी के त्योहार में हमारा चित्त कृष्ण में रमना चाहिए ना, जैसे तैसे, और उसमें न रह करके मान लिया कि हमने बिजली का डेकोरेशन किया, और जाकर के बार बार देखते कैसा डेकोरेशन हुआ, और कितने लोग आ रहे हैं, वाह आज तो हजारों लोग आ रहे हैं आश्रम, देखा कि आज हम लोगों का परिश्रम, आज तो बहुत तरह के चढ़ावे आ रहे हैं, बहुत प्रभाव, देखो तो कितना सुंदर रूप में सजा है, बस इसमें रह गए, चित्त में कृष्ण आए तो क्या हो, यही बहु आरंभ न हो जाए, इसी में हम लोग रह गए। आज हम लोग कहीं कुछ पढ़ रहे थे, उसमें पारंपरिक एक शब्द है, कर्म एक साधन है, किंतु पारंपरिक साधन है, डायरेक्ट साक्षात साधन नहीं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, वेद विहित कर्म और वेद विहित जो नहीं, वेद विहित भी दो प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें एक हिंसा प्रधान होती है, जिसमें हिंसा इत्यादि नहीं होता, अहिंसा कर्म होता है, वेद में भी हिंसा कर्मों का भी जैसे यज्ञ है, ये क्या है, पशु बलि इत्यादि, पशु हिंसक, और एक है जिसमें हिंसा इत्यादि वृत्तियां न रहे, ऐसी ऐसे भी कुछ वेद विहित कर्म, उनमें से हम लोगों के लिए कौन सा कर्म करनी है, हिंसा रहित, वो भी कर्म कैसा,
निष्काम,
वो भी निष्काम कैसा है? निष्काम कैसा? निष्काम दो प्रकार के, एक ज्ञान की तरफ में मुक्ति के तरफ में चलने वाला और एक होता है भक्ति के चलने। इसमें से हमको भगवत भक्ति से युक्त रह करके संसारी कामनाओं और शरीर भगवान के लिए ये कर्म करना हमारे लिए भी है। और ये भी कर्म कैसे करना है? भक्ति का आच्छादक ज्ञान कर्म आदि ऐसे करना। इस तरह से जो पशु हिंसा इत्यादि वाले जो कर्म हैं, जो वेद विहित नहीं है या वेद विहित होने पर भी भक्ति के अनुकूल नहीं है, उनको पारंपरिक योग कहा गया है। नहीं, पारंपरिक इसलिए कहा गया, वो करते हैं फिर उसके बाद में ऊपर में आते हैं, फिर ऊपर में आते हैं, फिर जब उनका कर्म भक्ति का उद्देश्य करेगा, या से जग्यार्थात कर्मणो, कर्म जब भक्ति के उद्देश्य से होगा अथवा भगवान के उद्देश्य से साधित होंगे, किया जाए ना शेष दिखे
लोकी के वैदिक की बात
नहीं, ये गीता का नहीं, गीता का। हाँ, जब करोशी जदस्नाशी जग्जिहोशी जग जदासी तक जग तपस्या स्कंधे यह तब करोशी उन सबको मेरे लिए अर्पण करना भक्ति नहीं है, किंतु यही परिशुद्ध होने पर भक्तों के साथ में रहने पर जब कर्म का भाव समाप्त हो जाएगा वो भक्ति में बदल जाएगा, तो वो फिर कर्म की भक्ति की जो कि परंपरा में आएगा। अभी आएगा इसलिए कह दिया कर्म को जो ये तीनों ये पारंपरिक, वैसे ज्ञान के लिए भी भक्ति ही एकमात्र ऐसे है जैसे कि भगवान को पाएगा, ये डायरेक्ट उपाय और बाकी सब पारंपरिक। पारंपरिक इसको कहते हैं, और थोड़ा सा समझ लो, जैसे हरिनाम हमको करना है, हरिनाम हम पहले सवेरे उठ करके अपना शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान करके तब करें। ऐसे स्नान करना शौच निवृत्ति होना ये क्या चीज है? भक्ति है तो क्यों करते हैं? ये पारंपरिक है, जब तक हम शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान करके पवित्र नहीं हुए तो उसके लिए। किंतु यदि कोई स्नान नहीं करता, टट्टी भी नहीं जाता, हरिनाम करता है, तो उसमें बाधा क्या है? बाधा नहीं। किंतु उस स्थिति में रह करके मैं अपवित्र हूं और कर रहा हूं, ये भावना जो लगी हुई है उसमें भावना ये लगी रहेगी, इसलिए भक्ति के लिए वो बाधक है। इसलिए इसको कर करके स्वच्छंद चित्त से शांत चित्त से भगवान का भजन करने के लिए स्नान और शौच निवृत्ति हो, तो ये ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्नान ही नहीं करते, कहते हैं बेकार काम, ये समय फालतू नहीं है, इसमें बस उसको करते नहीं है, बस अपना भरोसे। इसलिए भक्ति ही मूल चीज है, भक्ति यदि होती है तो उसकी जरूरत नहीं, और भक्ति नहीं होती है तो भी उससे कुछ लाभ नहीं होने का। अब यहां तक तो पूर्वराग के ये बताया, जो हम लोगों को अनुकूल है उसके अनुसार में बताया। ये प्रारंभ में प्रारंभिक रूप में हम लोग ये प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, ये रोग हमारे लिए बहुत बुरे हैं। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, देह रोग रवे दुनो
संसार पुकार काने ना
पोसी, संसार पुकार काने ना पोसी बे देह रोग दुनो। प्रभु ऐसे जब मैं नाम करूं, आप प्रार्थना अब से करता हूं कि संसार की जो बातें हैं वो हमारे काम में ना आए, वो बहुत आदमी दुखी है, वो बहुत रोगी है, वो अभी मर रहा है, वो ये हो रहा है, उसके घर में ऐसी विपत्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई ना कोई समस्या है, जरूर समस्या है। किंतु जो शुद्ध भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति है वो चाहेगा कि हमारे कान में ये संसार पुकार कान ना पुष, ये सब चीजें हमारे कान में ना आए, निश्चिंत रूप से भगवान। और देह रोग, देह रोग के साथ में भगवान का भजन होना जरा, इसलिए पहले स्थिति में यह प्रार्थना हो, शुद्ध भक्तों का संग नहीं मुझे मिलता है, मेरा शरीर मेरे भजन के लिए प्रतिकूल हो रहा है, मुझे नींद आती है, अनर्थ है, अपराध हो रहे हैं। आप आदमी जानता कि ये अपराध है, कभी छोड़ नहीं पाता है, कुछ ऐसे कुछ संस्कार होते हैं। जानता जानने पर जानता है कि हमको वैष्णव के अनुगत्य में रह करके उनकी हर एक बात को मान करके भगवान का भजन करना जरूरी है, क्यों कर पाता है, उस स्तर में नहीं है इसलिए नहीं कर पाता। इसलिए इन सब उन लोगों के लिए प्रार्थना करना ये भी विप्रलंब हो जाता है। ऐसे करते 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 विप्रलंब से धीरे 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 भगवान के लिए फिर पहले भजन में आएगी कि हमारा भजन नहीं हो रहा है इसके लिए, और इसके बाद में फिर भजनीय जो कृष्ण है, गोप है, गोपियां हैं, कृष्ण के परिकर हैं, उन लोगों के लिए जाएगा जो उनकी सेवा। अब कहते हैं जिनका मिलन हो चुका है और कृष्ण बहुत दूर चले गए हैं, उस दिन बतलाया था जो पहला है पूर्वरा, दूसरा मान, इसके बाद में प्रवास, और तब है सुदूर प्रवास। दूसरा है
मान,
मान साधक में नहीं होगा, ये उन गोपियों में हो सकता है या जो परिकर, और प्रेम वैचित्य भी उन लोगों के लिए संभव है। बहुत दूर कृष्ण चले लगे हैं, बहुत दिन हो गया मिलना, इसमें हम कह सकते हैं कभी उनके साथ में हो सकते हैं, जब कभी बहुत दिनों से वो मिले, इसलिए भी प्रलंब गोपियों में है, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कहाँ से, पद्यावली में लरुप गोस्वामी ने उसको उद्धृत किया है, माधवेंद्रपुरी वचन,
माधवेंद्रपुरीनाथ
है मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदय तद आलोक काम। दूर प्रवास राधा भाव के अधिक उपयोगी है, अत्र भ्रम गीति इत्यादि में ये पठन है, राधा भाव उच्छ्वास तथा माधवेंद्र पुरी पाती, इसी भाव में सब समय रह करके दो श्लोक वो अधिक करते हैं, दीन दयात्रनाथ हे मथुरा नाथ सदा, और दूसरा हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनानंद, हा हा करानुभवतासि पदमदिशो। अश्वत्थामक में दो श्लोक, हे नाथ हे प्रेष्ठ
काशी
39 अध्याय में
वासि काशि महावय दशास्य कृपणयामि सखी दर्शय सन्धि।
देखिए इसमें बहुत सुंदर सब व्याख्याएं हैं, यहाँ पर गोपियां कह रही हैं, श्रीमती राधिका जी कह रही हैं, और माधवेंद्र कृपा जी इसको सब समय, चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बहुत ग्रहण करते हैं, और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी इस श्लोक का बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत जहाँ भी प्रलंब का भाव होता था इस श्लोक को, और एक करते थे ये करते सिरुपदाम भोजी धूली सात जन्मनि जन्म दीन दया करना, गोपियां जब कृष्ण द्वारका में चले गए हैं उनके लिए यहाँ पर रह करके वृंदावन में ब्रज में आंखों को बंद कर रोते रोते कह रहे हैं, अई दीन दया करना, आप तो दीनों के पर दया करने वाले समस्त के नाथ, जो अत्यंत दीनहीन होकर के रोते रोते आत्र हो जाते हैं, अथवा जिनकी करुण पुकार को सुन करके आप अत्यंत आपका हृदय आत्र हो जाता है, दोनों किसी भक्तों की आर्द्र भावना को देख करके आप उसी समय दया करने वाले
द्रवित हो जाते हैं,
वो भी आप भी द्रवित हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी जी की करुण पुकार को सुन करके उस समय कहाँ कृष्ण थे, उस समय द्वारका में थे, और वहीं से करुण पुकार उनकी जब सुनी तो एकदम चित्त चंचल हो गया, आंखों में आंसू भर आए, और उनकी रानियों ने पूछा आपकी स्थिति ऐसी क्यों हो रही, तो आज एक भक्त के ऊपर में बड़ी भीड़ पड़ी है, बहुत दुख है, आप जल्दी से जाइए, तो यही था मैं जा नहीं पा रहा, तो जाने में बाधा क्या है, जाने में बाधा कुछ है ये नहीं बता, किंतु बाधा थी क्या, उसका अपना प्रयास, अपने प्रयास से अपनी चेष्टा से अपने दुखों को दूर करने के लिए चेष्टा कर, उसका भरोसा भी दूसरे दूसरे पर है। देखा जी अब तो थोड़ी देर में ही नग्न होने वाली है, साक्षात जाधातियों के बल से दुशासन उसका सिरखंड खींच रहा है, और उसका ये केश खैंचता हुआ लेकर के सभा में पटक दिया, उस समय कोई चू तक नहीं कहा, भीम उठ रहे हैं मारने के लिए उसको, और युधिष्ठिर महाराज उसको बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, दुर्योधन तमक करके उठते हैं धनुष लेकर के, उनको भी कहते हैं बैठो बैठो बैठो, अर्जुन सबको बैठा दे, अर्जुन को सबको बैठा दे। उस समय में देखा जैसे हमारे अपने लोग कुछ नहीं कर सके, और वो हमको लात से मार करके और घसीट कर गए, हमने ऐसी दुर्दशा आज तक पहले कभी नहीं हुई थी, आज पहली आंखों से आंसू होती है, और उस समय और स्थिति बड़ी कभी इसको नंगी करके, दुर्योधन ने कहा कि हम काल खो करके और यहाँ पर बैठा दो नंगी कर, और उस समय दांत बाहर करके शकुनी कर्ण दुशासन सब हंस रहे हैं, अच्छा ठीक है भाई का आज्ञा, ये राजा की आज्ञा है इसको जरूर पूर्ण, राजा तो ईश्वर होता है बस पाल करो। उस समय देखा जैसे वो उठने नहीं दे रहे, भीष्म पितामह की तरफ में देखा, तरफ पिता आज वो लज्जा को हजम कर गए थी, उनको भी कुछ नहीं, द्रोणाचार्य गुरु के तरफ में देखा, ये सब जो चीजें हमारी रक्षा करेंगे किसी ने, यहाँ पर सभा इतनी बैठी है किसी ने भी चूतक नहीं किया, कैसे विलंब, अब ये सबके तरफ से हताश हुई, अब तक आशा थी, ये आशा के कारण किसी नहीं आ रहा है, तरह तरह के आदमी हैं, दूसरे लोग को आ गए हैं, ये देखेंगे क्या होगा, और जो शिष्ट लोग थे देखा जैसे जब इतनी ये सब लोग बैठे हुए कुछ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, तुझे डर के मारे चुपचाप, और जिनको शक्ति थी द्रोणाचार्य और विश्वामित्र उनके लिए कहा गया जैसे नमक खाता था उन लोगों का, उनकी दुर्बुद्धि हो गई, किंतु कुछ बात और भी थी, वो तो ज्ञानी थे, जानते थे जैसे भगवान अपनी शरणागतों की रक्षा करते हैं, तो जरा देखें और जगत देखे, पहले युधिष्ठिर महाराज को और इनको भीष्म पितामह को ये जरूर था कि जरूर कृष्ण यहाँ पर रक्षा करें,
द्वादश महाजनों में एक,
इसलिए उन पर यह लांछन लगाना कि उनके खाने से और नमक खाने से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये ठीक नहीं दिख रहा, किंतु ये भी ठीक है दूसरों के लिए ये ठीक है। उस समय में जब देखा कि कोई सहारा नहीं रह गया, कृष्ण छटपट कर रहे हैं आने के लिए, प्रकट होने के लिए, इसके बाद में जब देखा कि सब भरोसा उसका टूट गया, कोई सिपाह नहीं रहा, तो कृष्ण के लिए वो कंठित हुआ, बस हे कृष्ण, वो ये मनी मन में कर हे कृष्ण अब तो मेरी रक्षा कर, किंतु कृष्ण तभी नहीं आए, क्यों उसके दांतों में अंचल बुद्ध रखा, दांत से ऐसे पकड़ रहा जैसे समुद्र में अथा समुद्र में अनंत समुद्र में कोई गिर जाए,
तीन के
एक सूखा तिनका देखता है ना तो क्या करता, लपक करके पकड़ने चाहता, अब तो मर ही रहा है, वो सोचता कि यदि मैं इसे बच जाऊँ। कुछ तिनके हैं सूखे एक बुझ, देखा कि बहता हुआ जा रहा है, पर झट उसको पकड़ने के साथ साथ वो भी गया, वो भी गया। अब कोई भरोसा, वो तिण जो भरोसा था वो भी, अब उनका जो तिण के समान ये जो भरोसा था, ये दांत से हम इसको रखें, किंतु वो तो ऐसा खैचा जैसे अब तो ये दांत में नहीं रहा, तो दांत से छोड़ दिया, आंख बंद कर दिया, हाथ उठा दिया, अपनी सब सारी शक्ति शक्ति सब छोड़ दिया। ऐसा हाथ उठा देना माने क्या? हम तो शत्रु के हाथ में आत्मसमर्पण करते हैं, और वहां पर किसके लिए हाथ उठाया? बस कृष्ण के लिए उठाया, बस कृष्ण। झट अब उत्तर देने को समय नहीं मिला, झट एक सेकंड नहीं लगा, और झट आकर के
वस्त्र
वस्त्र है कि कृष्ण है ये पता नहीं चला, मुखी रक्षा। ऐसे ही जब तक कि हमारा सारा विश्वास जो रक्षा करने वाला है, पालन करने वाला है, हमको देखने वाला सुनने वाला है, ये जब तक दूसरों पर निर्भर है, हमारा बेटा करेगा, हमारा बाप करेगा, मेरी स्त्री करेगी, ये संसार वाले करेंगे, रुपया पैसा करेंगे, तब तक भैया कृष्ण नहीं। इसको समझ, इसलिए ये त्रुटियां किसके अंदर है? हमारे अंदर में ये त्रुटि, इस त्रुटियों के लिए प्रार्थना करें। तो कहते हैं कि ऐसे जो दिन हैं, दिन में सभी नहीं, जो कृष्ण के प्रति ऐसी भावना रखते हैं, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दिन नहीं है? उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। चतुर्विधा भजन ते मान सुकृतम अर्जुन, ये चार प्रकार के आर जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के जो भजन करते हैं वो चार प्रकार के लोग भजन नहीं करते, उनमें पूर्व जन्म का संस्कार उनमें यदि कुछ
सुकृतिशाली हो तब,
और भगवान के प्रति उनकी बुद्धि हो, जो भगवान ही हमको रक्षा करे। मैं आर्त हूँ, जैसे थे ग्राह और गज में युद्ध हो रहा, उसने कमल का एक 10,000 वर्षों से युद्ध होने के बाद में जब वह नहीं अपने को बचा सका, तो कमल का एक फूल लिया और देखा जब तो मर ही रहा है, बस उठा करके सूर ही बचाता, सूर से ऐसा ऊपर उठा और कृष्ण के चरण में ये प्राण अपना, और मैं बचूं और न बचूं इसकी चिंता मुझे नहीं, अब तो मैंने ये चरण अपने प्राणों को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर, जो भी समर्पित कर दिया, अपनी आशा भरोसा और लड़ाई युद्ध करना सब छोड़ दिया, अपना कोई भी प्रयास नहीं छोड़ दिया, जैसे द्रौपदी ने छोड़ दिया ना, ये भी छोड़ दिया जो वो ले जाए हमको संपूर्ण। कृष्ण यदि रक्षा करेंगे ठीक है, और न करेंगे तो भी ठीक है, ये उन पर ही था, जहाँ छोड़ा तहाँ कृष्ण झट आकर के गज और ग्रास समेत दोनों को उठा करके खींच लिया जमीन पर, और जमीन पर लेकर के चक्र से उसका यहाँ से यहाँ तक चीर दिया, और उसका पैर एकदम साबुत, वो तो अपना शरीर छोड़ करके दिव्य देवता गंधर्व बन करके निकल करके कृष्ण को प्रणाम करके, और ये हाथी अब इसके पूर्व जन्म की स्मृति आई और उनकी स्तुति करता हुआ शरीर छोड़ करके ये भी इंद्रदुम्न बन करके भगवान का भजन करके उसकी साक्षात्कार कर। ऐसे ही जब तक अपना प्रयास नहीं जाएगा, तब वो दिन, तब उस स्थिति में यदि कृष्ण के लिए वो दीनता हो, ऐसे जो दीन व्यक्ति हैं विपत्ति में या जैसे भी हो, भगवान को केवल कृष्ण को ही एकांतिक रूप में और दूसरे का नहीं, गणेश जी भी साथ साथ में हैं, दुर्गा मैया भी साथ में हमारी रक्षा करने वाली हैं, साथ साथ में हमारा पैसा पॉकेट में गर्म है ये रक्षा करने वाला है, अरे नहीं होगा तो अपनी घड़ी बेच करके हम वहाँ चले जाएंगे, घड़ी है ना हमारे पास बेचते अभी कुछ है, इस तरह से कुछ भी हमारे साथ में अभी जब तक रहेगा, जब तक निष्किंचन नहीं होंगे तब तक भगवान की कृपा होना, तो इसलिए कहते हैं अई दीन दया, हम तो ऐसे नहीं हैं, आप तो दीनों के नाते, इसलिए गोपियाँ वहाँ पर बड़ी विषाद ग्रस्त होकर के रो रही हैं, अई दीन दयाद्र, आप तो उन्हीं के नाथ हैं। फिर कहती हैं मथुरा नाथ के यहाँ पर उनको कुछ क्षोभ हुआ। पहले तो दिन दयानाथ कहा है, उन दिनों में हम भी हैं, हमारे ऊपर में कृपा करेंगे। तो फिर उनको कुछ उसी में रोते रोते हुए भी कुछ क्षोभ आ गया। क्षोभ माने क्या, कुछ मान सा उसी में आ गया। तब उन पर बिगड़ करके कहने लगी, आप दीन दयानाथ जरूर नहीं है, आप क्या हैं, मथुरानाथ माने कुब्जा, इसलिए मथुरानाथ। अब आप गोकुलनाथ नहीं रहे, दीन दयानाथ नहीं रहे, आप दीनों के पुकार से आप आद्र नहीं होते। अब तो मथुरा में बड़े राजा हो गए हैं, राज्य के अधिकारी हो गए हैं, हाथी घोड़े इत्यादि हैं, राजाओं के ये सब चिन्हों से आप अलंकृत हो रहे हैं, आप हम लोगों की दुख की बातें कैसे सुनेंगे। इसलिए हे मथुरा कदा बोलो कैसे, अब कब दिखाई पड़ेंगे, अब तो हमें छोड़कर के मथुरा चले गए, पिताजी का नाम भी बदल दिया, मैया का नाम भी बदल दिया, पिताजी आपके हो गए वसुदेव जी, मैया हो गई
देवकी रानी,
और वृंदावन छूट गया, आप वहाँ के मथुरा के नाम बन गए,
और क्षत्रिय जाति में।